ओम शांति और नमस्कार। आप सभी का आज के इस सत्र में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है माइंड मैनेजमेंट। हमें अपने एक इंजीनियरिंग प्रोफेसर की बहुत याद आती है, क्योंकि उनको पढ़ाने का एक बहुत वंडरफुल स्टाइल था। वो हमें बहुत बहुत वंडरफुल बातें बताते थे, विच वॉज नॉट देयर इन द सिलेबस एट ऑल। लेकिन विशेषता उस प्रोफेसर की ये थी कि वो बाहर की बातें बताते बताते कैसे हमारे सिलेबस को कवर करते थे। दैट वॉज अ यूनिक स्पेशलिटी ऑफ दैट प्रोफेसर। एक दिन वो प्रोफेसर हमारे क्लासरूम में आए और हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। ये पूछा कि हाउ मेनी ऑफ यू पीपल हैव सीन ताजमहल। तो कुछ एक लोगों ने तो ताजमहल देखा था, कुछ लोगों ने नहीं देखा था। फिर उन्होंने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा, कैन यू कॉल ताजमहल एन इंजीनियरिंग मार्वल, इफ येस वाई, इफ नो वाई। क्या आप ताजमहल को एक इंजीनियरिंग मार्वल कह सकते हो? अगर हां तो क्यों, अगर ना तो क्यों। तो जो हम सभी स्टूडेंट्स बैठे थे, हमको सबको लगता था कि यस, ताजमहल इज एन इंजीनियरिंग मार्वल। और उसके लिए हमने बहुत सारे रीजंस भी बोले, सर ये स्ट्रक्चर इतने वर्षों से बना है, नेचुरली इट्स एन इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर। हमको स्टूडेंट्स ने कहा, सर इट्स परफेक्टली सिमेट्रिकल इन नेचर। हम एक जगह से देखते हैं तो बराबर दूसरी जगह दिखाई देता है, सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज एन इंजीनियरिंग मार्वल। कुछ लोगों ने कहा कि सर ऐसे भी कहते हैं कि उसके कहीं से डोम से एक पानी का बूंद गिरता है, विच इज नॉट सीन, वेयर डज दिस वाटर कम फ्रॉम, परफेक्टली है ना, सेमी स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर। ऐसे बहुत सारे कारण हमने बताए और हमारे प्रोफेसर साहब ये सारे सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। और हमारे सारे जवाब के बाद उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, ताजमहल कैन नॉट बी कॉल्ड एज एन इंजीनियरिंग मार्वल, यस इट कैन बी कॉल्ड एज एन आर्किटेक्चरल मार्वल। और हमको लग रहा था व्हाई इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज एन इंजीनियरिंग मार्वल। उन्होंने कहा, देयर आर टू गुड रीजंस फॉर इट। रीजन नंबर वन, व्हेन शाहजहां वाज बिल्डिंग द ताजमहल, हाउ मेनी इंजीनियरिंग कॉलेजेस वर देयर। हमने कहा, सर ये तो पुअर जोक है सर, मजा नहीं आया। बोला, यस नाउ देयर इज अ सेकंड गुड रीजन। और उन्होंने हमसे कहा कि व्हाई डू वी रिक्वायर सो मेनी इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स टुडे। आज हमें इतने इंजीनियर्स की जरूरत क्यों है, इतने मैनेजर्स की जरूरत क्यों है? और उन्होंने कहा, द रीजन इज टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एनी सिस्टम। अब हाउ डू वी डिफाइन एफिशिएंसी? एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, करेक्ट। अब ये एफिशिएंसी को हम दो तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, या तो हम आउटपुट को बढ़ाएं या तो हम इनपुट को कम करें, करेक्ट। जो भी एक स्ट्रक्चर डेवलप होती है उसमें कौन कौन से रिसोर्सेस लगते हैं? वी यूजुअली यूज द फाइव रिसोर्सेस, मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी एंड मेथोडोलॉजी, ठीक है ना, राइट। अब इस एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा सके कि हम जितना ये रिसोर्सेस को कम यूज करके इसके एफिशिएंसी को बढ़ाएं, राइट। और फिर हमारे प्रोफेसर ने कहा, व्हेन शाहजहां वाज बिल्डिंग द ताजमहल, देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेस एट ऑल। यस, आज रिसोर्सेस आर एट अ टेरिफिक शॉर्टेज। मेन कम है, मटेरियल प्रॉब्लम है, मनी इज अ प्रॉब्लम, मशीनरी इज अ प्रॉब्लम, बट व्हेन शाहजहां वाज बिल्डिंग द ताजमहल इसकी कोई कमी नहीं थी। एंड दैट इज अ रीजन व्हाई इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज एन इंजीनियरिंग मार्वल। यस, टुडे व्हाट वी सी, द बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस हाईवे कैन बी कॉल्ड एज एन इंजीनियरिंग मार्वल, द कोंकण रेलवे कैन बी कॉल्ड एज एन इंजीनियरिंग मार्वल, द सुएस कैनाल, द पनामा कैनाल कैन बी कॉल्ड एज एन इंजीनियरिंग मार्वल, बिकॉज देयर नीड्स टू बी एन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस। लेकिन हमारे प्रोफेसर वहां तक नहीं स्टॉप किए, उन्होंने एक स्टेप अहेड हमको लिया। उन्होंने कहा कि आज मेन को कैसे मैनेज करना है, मटेरियल, मनी, मशीनरी, मेथोडोलॉजी को कैसे मैनेज करना है, उसके लिए बहुत सारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। लेकिन दुख की बात है कि ये जो पांचों एम है उसको मैनेज करने के लिए एक सिक्स एम की जरूरत है, और वो सिक्स एम को मैनेज करने के लिए हम तो किसी को सिखाते ही नहीं। वॉट इज दैट सिक्स एम? माइंड। बिकॉज इट इज अ ह्यूमन माइंड विच मैनेजेस दिस फाइव रिसोर्सेस। लेकिन ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है जो हमें मन को कैसे मैनेज करना सिखाता है? अनफॉर्चुनेटली नॉट, करेक्ट। अच्छा, एक जमाना था जहां पे हम अपनी माइंड की एफिशिएंसी चेक करते थे डिपेंडिंग अपॉन अ पर्सन्स आईक्यू। एन आईक्यू स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंस कोशेंट, करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, डिपेंडिंग अपॉन अ स्टूडेंट्स फिजिकल एज, कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन द राइट आंसर्स हम उस कैंडिडेट को डब करते हैं 60% आईक्यू और 80% आईक्यू. लेकिन हमको मालूम होना चाहिए कि दीज डेज आईक्यू इज टोटली आउटडेटेड. इट इज बीन रिप्लेस्ड बाय कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड एज ईक्यू. ईक्यू मींस इमोशनल कोशेंट. अर्थात इमोशनल कोशेंट मींस हाउ आई एम एबल टू मैनेज माय इमोशंस, वेरियस काइंड्स ऑफ इमोशंस. जब एक स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में जाता है तो डर जाता है, उसका माइंड इज इन टेरिफिक स्ट्रेस, ही इज नॉट एबल टू मैनेज हिज इमोशंस. नाउ हाउ डू आई मैनेज माय इमोशंस, दैट इज अ थर्ड एस्पेक्ट व्हिच इज कॉल्ड एज अ एसक्यू, मींस स्पिरिचुअल कोशेंट. वी विल बी एबल टू मैनेज आवर इमोशंस इफ वी हैव दिस स्पिरिचुअल कंटेंट इन अस, मींस अ लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड. इसे अगर हमें मैनेजमेंट के कंसेप्ट को समझना है तो आई हैव टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम दीज थ्री पर्सपेक्टिव्स. जैसे द फर्स्ट इज द आईक्यू डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. व्हाट इज आईक्यू डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट? टू गेट वर्क डन फ्रॉम पीपल. बहुत पुराना डेफिनेशन है कि हम लोगों से जो काम करवाते हैं, दैट इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. लेकिन सोचने की बात है, आज एक छोटे से बच्चे को भी काम कराने के लिए मेहनत लगता है, हम दूसरे लोगों से कैसे काम करा सकते हैं? Therefore, it's an obsolete definition of management. What is the EQ definition of management? And that is, we can define as man plus age plus men plus T. अतः सबसे पहले हम अपने आप को मैनेज करें. और जब हम अपने आप को मैनेज करेंगे तो automatically I get the courage, the wisdom, and then I will be able to transform the men. Transformation करना है. Okay? That's an EQ definition of management. And what is the SQ definition of management? A very wonderful definition is man a gem. Har ek vyakti heera hai. That's an SQ definition of management. Aur har ek vyakti heera kaise banta hai? So we have to go to an ENT specialist. ENT. E stands for enlightenment. मतलब एनलाइटमेंट मीन्स हमें यह समझना है कि यस, मैं एक आत्मा हूं जो अजय अमर अविनाशी हूं. दैट्स कॉल्ड इज एनलाइटमेंट. नंबर टू इज अंडरस्टैंडिंग अवर ट्रू नेचर. आत्मा का स्वधर्म क्या है, है ना? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति. इसलिए संसार में किसी भी व्यक्ति से पूछो आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, वो कहेगा मेरे जीवन में सुख शांति होना चाहिए, मेरे परिवार के जीवन में सुख शांति होना चाहिए, बिकॉज दैट्स द इनेट नेचर. एंड टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर आवरसेल्फ टू सक्सेस. अगर हमें सचमुच सफलता चाहिए तो अपने आप को ट्रांसफर करना होगा. एंड दिस इज एन एसक्यू डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. ओके, नाउ हम अपने माइंड को इस तरीके से कैसे ढाल सकते हैं, तो मैं आपके सामने कुछ एक पांच बात बताऊंगा. वो अगर हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा माइंड वी वुड बी एबल टू मैनेज वेरी इजली. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज मेक माइंड योर बेस्ट फ्रेंड. अपने मन को बहुत अच्छा दोस्त बनाओ, है ना? तो दोस्त कौन बनते हैं? जो हमारे साथ बहुत अच्छी बातें करते हैं, जिनके साथ हमारा वेवलेंथ मैच होता है, जिनके साथ हमारा कम्युनिकेशन मैच होता है, राइट? उसी तरह हम भी मन के साथ बातें करें और मन को अपना एक दोस्त बनाए. अक्सर हम मन के साथ कैसे बात करते हैं? अरे मन, तू तो बहुत चंचल है, घोड़ा है, भागता रहता है. दैट्स नॉट द राइट कम्युनिकेशन विद द माइंड. लेकिन मन को अपना बहुत अच्छा दोस्त बनाओ. हे मन, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है. आई नीड यू. यू आर माई बेस्ट फ्रेंड. आप मेरे बहुत अच्छे मंत्री हो. इस प्रकार का कम्युनिकेशन जो है वो मन के साथ होना चाहिए. दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप. नंबर टू, अगर हमें माइंड को मैनेज करना है तो रीड गुड बुक्स. अच्छे अच्छे किताबें पढ़िए, राइट? 29th May 1953, सर एडमंड हिलरी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम द हाइएस्ट माउंटेन. दैट्स द माउंट एवरेस्ट, 29,000 feet स्ट्रेट अप. लेकिन अगर आप उनकी किताबें पढ़ेंगे, हाई एडवेंचर्स, हमको यह पता चलेगा कि सर एडमंड हिलरी वॉज नॉट सक्सेसफुल राइट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. जब वो पहली बार चढ़ाई कर रहे थे, आफ्टर सम टाइम ही हैड टू अबॉर्ट द जर्नी, बट देन ही बिकेम वेरी फेमस अक्रॉस द ग्लोब एज द फर्स्ट पर्सन हु अटेम्प्टेड क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट. एंड देयरफॉर ही बिकेम वेरी फेमस. बहुत जगह उनको बुलाया गया टू शेयर हिज एक्सपीरियंसेस. एक बार वो एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए जैसे ऑडिटोरियम में आए, द The whole of the people gave him a standing ovation. He walked up to the stage and he saw a very big portrait of Mount Everest. So he addressed the Mount Everest. "Hey Mount Everest, you have defeated me for the first time, but second time I will defeat you, because you have grown all that you can grow, but I am still growing in my spirits. But I am still growing in my spirits." The next year he attempted climbing Mount Everest and he was successful. Many people asked him, "Sir, what was the greatest challenge you faced while you were trying to climb Mount Everest?" And Sir Edmund Hillary's reply was, "The greatest challenge was not the inclement weather. The greatest challenge was not the heavy luggage I was carrying. The greatest challenge was not the glare of the snow. But the greatest challenge I faced was a task of convincing myself, yes, I can do it. Yes, I can do it." जब आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा मन बहुत सहज तरीके से मैनेज हो सकता है. नंबर टू. नंबर थ्री, अगर हमें माइंड को मैनेज करना है, बी इन द कंपनी ऑफ पॉजिटिव पीपल. राइट, क्योंकि संघ का रंग लग जाता है. करेक्ट. द फर्स्ट वुमन आईपीएस ऑफिसर ऑफ द कंट्री, मिसेस किरण बेदी, 1982 शी वॉज इन चार्ज ऑफ द दिल्ली ट्रैफिक एंड शी डिड हर जॉब सो वंडरफुली कि उसके बाद शी वॉज गिवन अ ट्रांसफर टू अ प्लेस वेर नोबडी वुड एवर ड्रीम ऑफ गोइंग देयर. व्हाट वॉज दैट प्लेस? हाँ, मोस्ट ड्रेडेड प्लेस इन द कंट्रीज, दिल्ली तिहार जेल. व्हेन मिसेस किरण बेदी टुक अप द चार्ज, शी डिड व्हाट नोबडी कुड एवर ड्रीम ऑफ डूइंग इट एंड शी स्टार्टेड ट्रांसफॉर्मिंग द हार्ड कोर प्रिजनर्स एंड क्रिमिनल्स. She got associated with a large amount of NGO and spiritual units. She also got associated with the Brahma Kumaris Ishwari Vishwavidyalaya, जहाँ पे Brahma Kumaris के राज्यों के teachers वो hardcore prisoners के पास गए, उनको ये ज्ञान सुनाने लगे और धीरे धीरे there was terrific transformation in the lives of these hardcore prisoners and criminals. And because of her wonderful job, she was given the Magsaysay Award for Social Service and very recently the United Nations Prize also. देखो संघ का रंग कैसे लगता है. एंड वन ऑफ द क्लासिक एग्जाम्पल विच आई वुड लव टू कोट इज अ क्रिमिनल हिज नेम वाज डाकू पंचम सिंह, बट बिकॉज ऑफ दिस गॉडली नॉलेज इज नाउ रिफर्ड एज योगी पंचम सिंह. ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अच्छे लोगों के संग रहने से होता है. नंबर थ्री इज बी इन द कंपनी ऑफ पॉजिटिव पीपल. नंबर फोर्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमें मन को मैनेज करना है तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर डाइट. हम किस प्रकार का भोजन करते हैं? कहते हैं जैसा अन्न होगा वैसा मन बन जाएगा, जैसी पानी होगी वैसी वाणी बन जाएगी. सो वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस ऑफ द डाइट दैट वी आर ईटिंग. तो किस प्रकार का भोजन होना चाहिए? शुद्ध शाकाहारी भोजन. और जब आप वो भोजन बनाते हो, बी इन द रिमेम्बरेंस ऑफ द ऑलमाइटी गॉड. खुशी से, आनंद से वो भोजन बनाइए तो उसका इफेक्ट जो होगा बहुत बहुत वंडरफुल होगा. एक बार मैं बहुत अच्छा वर्कशॉप कर रहा था ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट. वर्कशॉप ख़त्म होने के बाद बहुत अच्छा फीडबैक मिला. एक भाई साहब खड़े होकर कहते हैं, "सर, व्हाई डू यू टेक सो मच ऑफ लेक्चर्स ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट? मेरे पास एक बहुत सुंदर टेक्निक है सारे स्ट्रेस को ख़त्म करने का." मैंने कहा, "भाई कौन सी टेक्निक है?" बोला, "सर, सारे दिन के स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए सर रात को दो पेग ले लो सर, सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा." मैंने कहा, "अच्छा भाई, दोनों दो पैग लेने से होता क्या है?" बोला, "सर, जैसे ही आप लेकर तो देखो." मैंने कहा, "भाई होता क्या, बताओ ना." बोला, "सर, जैसे ही मैं दो पैग लेता हूँ मुझे अति इंद्रिय आनंद का अनुभव होता है." मैंने कहा, "वाओ." मैंने कहा, "मैंने एक बहुत अच्छी प्रोवर्ब सुनी थी, ब्यूटिफुल प्रोवर्ब, और वो था, पीपल आर लुकिंग एट द राइट थिंग्स बट एट द रॉन्ग प्लेसेस. हम सही चीज को गलत जगह ढूंढ रहे हैं. हमने कहा, आप जो ढूंढ रहे हो ना आनंद के लिए, वो सही चीज है, लेकिन आप गलत जगह ढूंढ रहे हो. ड्रिंक गैलन्स एंड गैलन्स ऑफ अल्कोहल, यू विल नेवर बी एबल टू गेट दैट आनंद. वो आनंद में जाने के लिए यू हैव टू मूव एन इंटरनल जर्नी एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस प्रकार के गलत व्यसन करने से कभी भी आपको वो खुशी और आनंद का अनुभव हो ही नहीं सकता है. तो ये आनंद में कैसे अनुभव करूं, वो खुशी में कैसे अनुभव करूं, हमारा मन हमेशा वो एनर्जेटिक चार्ज पॉजिटिव कैसे रहे, उसके लिए लास्ट एंड फाइनल बात है एंड दैट इज मेडिटेशन. नाउ मेडिटेशन इज अ वेरी ब्यूटीफुल टेक्निक विच टेक्स अस टू अ वेरी वंडरफुल इंटरनल जर्नी, जहां पे हम ये खुशी आनंद का अनुभव कर सकते हैं. और उसका एक स्टेप बहुत जरूरी है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज साइलेंट में रहना है, द फर्स्ट स्टेप. साइलेंट में रहिए। और साइलेंट से दो शब्द बनता है, कौन सा शब्द बनता है साइलेंट से? एक तो है लिसन, LISTEN, लिसन। हम बहुत बोलते हैं लेकिन कभी कभी आप साइलेंट में होकर हमें वो आवाज को सुनाई देनी चाहिए। कौन सी आवाज? लिसन टू द ऑलमाइटी गॉड। आप उनको सुनने की कोशिश करिए। इन प्रेयर्स वी स्पीक टू गॉड, बट इन मेडिटेशन वी लिसन टू द ऑलमाइटी गॉड। एक दूसरी बात जो है साइलेंट से एक और शब्द बनती है विच इज कॉल्ड एज एनलिस्ट, ENLIST। एनलिस्ट करना है। क्या एनलिस्ट करना है? तो मेडिटेशन में वो प्रक्रिया सिखाई जाती है वेयर आई एनलिस्ट माय ओन क्वालिटीज। तो देयर इज अ स्टेज इन मेडिटेशन जहां पे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूं, वी आर एनलिस्टिंग इट। और फिर इसके बाद वो ईश्वर के गुणों को एनलिस्ट करिए। गॉड इज एन ओशन ऑफ साइलेंस, गॉड इज एन ओशन ऑफ लव, गॉड इज एन ओशन ऑफ प्यूरिटी। और इस तरीके से आप गॉड के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ये पांच बातों का अगर हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड को हम मैनेज कर सकते हैं। ये बहुत बहुत ज़रूरी है ताकि हम जो आज समाज में इतने प्रकार के जो मनोरोग हो रहे हैं उन सब से हम बच सकते हैं।
प्रोफेसर साहब, आई वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन कि आजकल जैसे कहते हैं कि बहुत सारे मेडिटेशन चले हुए हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट टाइप ऑफ मेडिटेशन एंड राजयोगा?
दैट्स अ गुड क्वेश्चन। इनफैक्ट जो दूसरे टाइप्स ऑफ मेडिटेशन होते हैं, हर एक मेडिटेशन का तो अपना फ़ायदा होता है, बट देर इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन राजयोगा एंड द अदर टाइप ऑफ मेडिटेशन। अक्सर करके लोगों को लगता है जब हम योग की बात करते थे इट हैज़ टू डू समथिंग विद फिजिकल आसनास, लेकिन एक डिफरेंस यहाँ पर है, इट इज़ नॉट जस्ट विद फिजिकल कंसेप्ट बट इट इज़ टू डू मोर ऑन अ मेंटल प्लेटफॉर्म। यहाँ पे मन को भोजन, अच्छा भोजन देने की प्रक्रिया को हम मेडिटेशन कहते हैं, वन। नंबर टू, कुछ एक जगह ऐसे बताते हैं कि मेडिटेशन में हमें अपने मन को एकदम शून्य बनाना है, विचारों को एकदम ब्लॉक करना है। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। राजयोग में ये सिखाया जाता है कि मन का काम तो है विचार करना, लेकिन ये जो विचार आते हैं उसको हमें पॉजिटिवली चैनलाइज करना है सो दैट दोज थॉट्स वुड एम्पावर यू, राइट? सो दीज आर वन ऑफ द टू डिफरेंसेस। मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर हमारे विद्यालय में आइए, इस पूरे टेक्निक को आप सीखिए, आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, साथ साथ में आपका मन भी तरोताज़ा रहेगा, ये हमारी शुभ भावना है।
सर, मैं स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट लाइफ में मेडिटेशन से मेरे को क्या फ़ायदा है?
ओके, देखिए स्टूडेंट्स के लिए भी ये मेडिटेशन बहुत बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, खास करके पढ़ाई के लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन याद करने होते हैं। और अक्सर करके स्टूडेंट्स का एक कॉमन कंप्लेंट होता है कि सर हम बहुत पढ़ते तो हैं लेकिन वो याद नहीं हो पा रहा है। तो मेडिटेशन से एक फ़ायदा होता है कि जो हमारी माइंड की जो एफिशिएंसी है और प्रोडक्टिविटी है ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ये जो मन की जो कार्य कुशलता है, कार्य क्षमता है, वो बहुत बहुत बढ़ जाती है। और विशेष तौर पर मेडिटेशन जो राज्यों के द्वारा हम जो सीखते हैं उसमें एकाग्रता की शक्ति भी बढ़ जाती है। एकाग्रता का अर्थ होता है जब मन और बुद्धि एक जगह टिकता है। हमने अक्सर देखा है जो बच्चे जो होते हैं जब वो पढ़ाई पढ़ते हैं तो मन कहाँ कहाँ भटक जाता है, लेकिन मन को सही दिशा देने की जो विधि है अनफॉर्चुनेटली वो नहीं सिखाई जाती है। तो वो जो टेक्निक है वो आप यहाँ सीख सकते हैं, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा तो ये होगा स्टूडेंट्स के लिए कि उनको जो एग्ज़ाम का जो डर होगा वो धीरे 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 कम हो जाता है, दे बिकम मोर कॉन्फिडेंट। ये उनका जो है दूसरा बहुत वंडरफुल फ़ायदा होता है। और तीसरा फ़ायदा ये होगा कि ओवरऑल पर्सनालिटी प्रोफाइल आपकी बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये मेडिटेशन करें, आपको ये सारे एरियाज़ में आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा, बेसिकली टू इम्प्रूव योर लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ओके
सर, माइंड मैनेजमेंट का थ्योरी तो समझ में आ गया, मगर इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किस तरह गेन करें वो बताएंगे?
हाँ, उसके लिए तो सबसे पहले कदम आपको उठाना है कि आपको ये मेडिटेशन की टेक्निक सीखनी होगी। तो उसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने व्यस्त जीवन से थोड़ा समय निकालिए और सिर्फ 7 घंटा आपको देना है जहाँ पे आप मेडिटेशन की पूरी प्रक्रिया को सीख सकते हैं। और एक बार आपने वो मेडिटेशन सीख लिया तो धीरे धीरे जीवन में आप इम्प्लीमेंट करते रहेंगे तो आपको उसका बहुत बहुत अच्छा अनुभव होगा। और ये जो मेडिटेशन का टेक्निक है, कोई भी उम्र के व्यक्ति सीख सकते हैं विदाउट इररिस्पेक्टिव कास्ट क्रीड रिलीजन जेंडर, कोई से भी उम्र के बच्चे, सारे के सारे फैमिली मेंबर्स भी अगर साथ में आकर इस मेडिटेशन की प्रक्रिया सीख सकते हैं तो भी इसका बहुत बहुत अनुभव होगा। ओके
सर, कुछ लोगों से सुना है कि इस मेडिटेशन में कुछ समय तो बैठ के करना पड़ता है, फिर चलते फिरते भी इसको किया जा सकता है, क्या यह सही है?
करेक्ट, क्योंकि बैठकर जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ समय के बाद वो सेल्फ की अवेयरनेस और गॉड की अवेयरनेस इतनी हो जाती है कि आप चलते फिरते भी उस मेंटल यूनियन में रह सकते हैं। ये तो कुछ समय अभ्यास के बाद ऑटोमेटिकली हो जाता है, धीरे धीरे अभ्यास के बाद प्रैक्टिस के बाद ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। चलते फिरते भी हम उस अवेयरनेस में रहें कि मैं आत्मा हूँ और ईश्वर मेरे साथ है, वो अवेयरनेस करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन उसके बाद आप बहुत ईजली बहुत सहज कर सकते हैं।
ये सब मेडिटेशन सीखने के लिए कोई ऐसा स्थान बनाया गया है? अगर स्थान है तो कोई चार्जेस वगैरह भी हैं या कुछ ऐसा ही मतलब?
ओके, दैट्स अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। ये जो राजयोग की जो टेक्निक ऑफ मेडिटेशन है, ये सारे ब्रह्मा कुमारीज के जो सेवा केंद्र हैं वहाँ पर आपको उपलब्ध होगी। देश विदेश में इसके करीब मोर देन 8,000 सेंटर्स हैं। आप इसके कोई से भी सेवा केंद्र में जा सकते हैं और उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं है, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसका आप वेबसाइट भी नोट कर सकते हैं, जिस वेबसाइट के द्वारा आपको सारे जो आप शहर में रहते हैं उस शहर का आपको एड्रेस मिल सकता है, इट इज़ www.brahmakumaris.com। इसके अलावा भी आपकी सुविधा के लिए हम अपना एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर इसमें डाल देते हैं, तो आप इस फ़ोन नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट कर इसके बारे में डिटेल एड्रेस ले सकते हैं। हमें बहुत खुशी है कि आपने ये क्वेश्चन पूछा और हमें विश्वास है कि आप ज़रूर ज़रूर ये सेवा केंद्र में जाकर ज़रूर मेडिटेशन सीखेंगे। तो हमारी ये शुभ भावना, ये शुभकामना है कि आप ये मेडिटेशन की प्रक्रिया ज़रूर कोई भी ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में जाकर सीख सकते हैं। एट द एंड मे आई सबमिट माई प्रेयर्स टू द ऑलमाइटी गॉड टू विश ईच एंड एवरी वन ऑफ यू एंड योर फैमिली मेम्बर्स कंप्लीट हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस एंड अ वेरी वेरी वंडरफुल माइंड। थैंक यू। ओम शांति।